एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास पर बात करने वाले हैं।
हाँ, नेथन हैरिस का पहला उपन्यास द स्वीटनेस ऑफ वाटर।
बिल्कुल, 2021 में आया और आते ही मतलब छा गया
जी। बुकर प्राइज की लॉन्गलिस्ट तक पहुंचा, ओपरा के बुक क्लब का भी हिस्सा बना, काफी चर्चा हुई इसकी।
और होनी भी चाहिए थी, हैरिस का लिखने का अंदाज, उसमें कुछ खास बात है।
हाँ, वो इतिहास के एक मुश्किल दौर को किरदारों की भावनाओं के जरिए दिखाते हैं, जैसे आप कहानी नहीं किसी की आपबीती सुन रहे हो। काव्यात्मकता है उनके गद्दे में।
बिल्कुल, तो ये कहानी है अमेरिकी गृह युद्ध के ठीक बाद की। जगह है जॉर्जिया का एक काल्पनिक कस्बा ओल्ड ऑक्स।
हाँ, रिकंस्ट्रक्शन एरा यानी पुनर्निर्माण काल कहते हैं इसे।
नाम तो पुनर्निर्माण है लेकिन असल में वो बड़ी उथल पुथल्ला वक्त था।
बहुत ज्यादा समाज टूटा हुआ, नस्लीय तनाव चरम पर, गुलामी खत्म तो हो गई थी कानूनी तौर पर,
लेकिन लोगों के दिमाग से, समाज से वो गई नहीं थी। तो आज हम इसी माहौल में बुनी कहानी, इसके पात्रों के सफर और उन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे जो हैरिस उठाते हैं।
और ये भी कि ये आज भी इतनी अहम क्यों लगती है।
हाँ, तो शुरू करते हैं ओल्ड ऑक्स के माहौल से। कैसा था वो वक्त?
कल्पना कीजिए, युद्ध अभी खत्म हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है, पुराना सिस्टम मतलब गुलामी वाला वो तो खत्म,
लेकिन नया कुछ बना नहीं है ठीक से।
बिल्कुल, हवा में डर है, गुस्सा है, अनिश्चितता है, खासकर श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच। आजादी मिल तो गई पर उसका मतलब क्या है जमीन पर, किसी को पता नहीं।
इसी माहौल में हम मिलते हैं जॉर्ज वॉकर से।
हाँ, एक श्वेत जमींदार, उसका बेटा कालेब लड़ाई में मारा गया है
और वो दुख में डूबा हुआ है
एकदम। उसकी जमीन बंजर है, जैसे उसकी रूह भी वीरान हो गई हो।
और उसकी पत्नी इजाबेल,
वो भी अपने गम में कैद हैं। दोनों के बीच जैसे एक दीवार खिंच गई है दुख की।
लेकिन इजाबेल के दुख में सिर्फ बेटे का गम नहीं है, कुछ और भी है, कुछ राज।
हाँ, जो बाद में खुलते हैं और कहानी को एक नई दिशा देते हैं, समाज के पाखंड को दिखाते हैं।
कहानी का मोड़ कहाँ आता है?
जब जॉर्ज अपनी जमीन पर घूम रहा होता है और उसे दो अश्वेत भाई मिलते हैं, प्रेंटिस और लैंड्री।
अच्छा, वो कहाँ से आए?
पास के बागान से आजाद हुए हैं, लेकिन आजादी के बाद बेघर बेसहारा जंगल में छिपे हैं डरे हुए।
और तब जॉर्ज एक फैसला लेता है।
हाँ, और वो फैसला उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा था, क्रांतिकारी कह सकते हैं।
क्या करता है वो?
वो उन्हें सिर्फ पना नहीं देता बल्कि काम का प्रस्ताव देता है, अपनी जमीन पर मूंगफली उगाने का और बदले में मजदूरी देने का वादा करता है।
मूंगफली, कपास क्यों नहीं?
यही तो खास बात है, कपास गुलामी का प्रतीक थी, मूंगफली शायद एक नई शुरुआत का, एक अलग तरह के रिश्ते का प्रतीक थी।
ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समाज के लिए।
बिल्कुल, ये सिर्फ नौकरी देना नहीं था, ये उन दो पूर्व गुलामों को इंसान समझना था, श्रमिक मानना था, संपत्ति नहीं।
और जाहिर है ओल्ड ऑक्स के श्वेत समुदाय को ये पसंद नहीं आया होगा।
पसंद, अरे वो तो भड़क गए, उनके लिए ये अपनी सत्ता पर हमला था, नस्लीय वर्चस्व को चुनौती थी। जॉर्ज का ये एक इंसानियत भरा कदम उसे अपने ही लोगों का दुश्मन बना देता है।
तो यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है।
हाँ, उपन्यास का मुख्य सवाल यही है, क्या नफरत और अन्याय की जमीन पर इंसानियत, भरोसा, सम्मान, क्या ये पनप सकता है
या समाज की नफरत उसे कुचल देगी?
बिल्कुल, जॉर्ज ब्रांटिस और लैंड्री के बीच वो जो एक नाजुक सा रिश्ता बनता है वो उम्मीद है, और दूसरी तरफ है समाज का क्रूर सच, इन्हीं का टकराव है पूरी कहानी।
और ये सवाल भी कि क्या सिर्फ कानून बदल देना काफी है?
वही तो, जब तक सोच नहीं बदलती, व्यवस्था नहीं बदलती, तब तक असली आजादी कैसे मिलेगी?
चलिए किरदारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। प्रेंटिस, बड़ा भाई।
प्रेंटिस, वो समझदार है, चौकन्ना है, दुनिया देखी है उसने, गुलामी की क्रूरता झेली है।
उसका एक सपना है।
हाँ, पैसे कमाना है ताकि उत्तर जा सके, अपनी माँ को ढूंढ सके जिसे सालों पहले बेच दिया गया था।
वो सिर्फ नाम की नहीं, असली आजादी चाहता है।
बिल्कुल, जॉर्ज के साथ उसका रिश्ता सम्मान का है, पर वो जानता है कि शक्ति किसके पास है, वो ये कभी नहीं भूलता। उसका सफर उम्मीद की तलाश है पर मुश्किलों से भरा हुआ।
और लैंड्री,
छोटा भाई लैंड्री, हाँ वो उपन्यास का दिल है, लेकिन खामोश दिल।
खामोश क्यों?
उसके पुराने मालिक ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसकी आवाज चली गई, वो बोल नहीं सकता।
अरे,
लेकिन उसकी खामोशी वो गुलामी की सारी पीड़ा बयान करती है, वो दर्द जिसे शब्द कह नहीं सकते।
वो संवाद कैसे करता है फिर?
अपनी ताकत से, अपने भाई प्रेंटिस के लिए अपनी वफादारी से और अपनी आंखों से। उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं।
वो उन लाखों अनकही कहानियों का प्रतीक है।
सही कहा। जॉर्ज के साथ उसका एक अजीब सा कोमल सा रिश्ता बनता है बिना शब्दों के, लेकिन उसकी कहानी ज्यादा लंबी नहीं चलती।
दुखद है ये। और जॉर्ज वॉकर, उसका सफर कैसा है?
जॉर्ज कोई बना बनाया हीरो नहीं है। शुरुआत में वो अपने दुख में खोया हुआ है।
भाइयों को काम देना उसके लिए क्या था?
शायद अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश, अपनी जमीन के साथ साथ अपनी आत्मा में भी कुछ उगाने की चाह।
वो बदलता है।
हाँ, धीरे धीरे। वो सिर्फ अपने दुख से बाहर निकलकर दूसरों को, खासकर प्रिंटिस और लैंड्री की इंसानियत को देखना शुरू करता है, समझने लगता है।
लेकिन समाज का दबाव भी तो होगा उस पर।
बहुत ज्यादा। उसे अपनी अंदर की आवाज और बाहर की नफरत के बीच लगातार जूझना पड़ता है। वो अच्छा बनना चाहता है, पर क्या वो अपने समुदाय के खिलाफ जा पाएगा? ये कश्मकश चलते रहती है।
वो एक अधूरा सहयोगी है।
हाँ, कह सकते हैं। उसकी कोशिशें नेक हैं, पर शायद ना काफी।
और इजाबेल वॉकर, उनका क्या?
इजाबेल का सफर भी बहुत अहम है। बाहर से वो नाजुक लगती हैं, दुख में डूबी हुई,
पर अंदर से मजबूत।
हाँ, उनमें एक छिपी हुई ताकत है। और उनका दुख सिर्फ बेटे की मौत का नहीं है, उसमें गहरे राज दफन हैं।
वो राज क्या है?
यही तो कहानी में एक और परत जोड़ते हैं। जब वो राज खुलते हैं, जब वो अपनी चुप्पी तोड़ती हैं, तब उनका असली रूप सामने आता है।
और जॉर्ज के साथ उनका रिश्ता भी बदलता है।
हाँ, बहुत दर्दनाक तरीके से, लेकिन शायद ज्यादा सच्चा हो जाता है।
तो वो राज क्या था?
इजाबेल की यादों से पता चलता है कि उनका बेटा कैलब, जो कॉन्फेडरेट सैनिक था, और उसका साथी ऑगस्ट वेबलर,
हाँ,
वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, उनके बीच गहरा प्यार था। एक ऐसा प्यार जिसे उस समाज में कोई मंजूरी नहीं थी।
अच्छा, ये तो बहुत कुछ बदल देता है।
बिल्कुल। ये दिखाता है कि ओल्ड ऑक्स में सिर्फ नस्ल के आधार पर जुल्म नहीं था, समाज हर उस चीज के खिलाफ था जो उसे अलग लगती थी, अप्राकृतिक लगती थी।
जैसे कैलेब और ऑगस्ट का प्यार।
हाँ, और जैसे प्रेंटिस और लैंड्री की आजादी की इच्छा।
दोनों ही
उस दमनकारी माहौल के शिकार थे, अलग अलग तरीकों से।
तो ये राज इजाबेल के दुख को और जॉर्ज की समझ को कैसे प्रभावित करता है?
इजाबेल का दुख और गहरा हो जाता है, क्योंकि वो जानती थी और चुप रही। और जॉर्ज, उसे दुनिया की क्रूरता का एक और चेहरा दिखता है। उसे समझ आता है कि नफरत कई शक्लों में आती है।
हैरिस बहुत बारीकी से दिखाते हैं
ये सब। जी, पूर्वाग्रह सिर्फ नस्ल तक नहीं है। और चुप्पी का बोझ कितना भारी होता है। जब ये राज खुलते हैं, तभी किरदार शायद आगे बढ़ पाते हैं।
कहानी आगे कैसे बढ़ती है? क्या उम्मीद की कोई किरण दिखती है?
हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है। मूंगफली की फसल अच्छी होती है,
एक प्रतीक के तौर पर।
बिल्कुल, जैसे कुछ नया उग रहा है। भाई पैसे बचाते हैं, माँ को खोजने का सपना पास लगता है, वॉकर फार्म जैसे एक छोटा सा द्वीप बन जाता है इंसानियत का।
लेकिन ये टिकता नहीं।
नहीं, तूफान आने वाला होता है। ओल्ड ऑक्स के श्वेत लोग, खासकर वो वेट क्रॉप्स जैसे जमींदार, वो जॉर्ज को माफ नहीं करते।
तनाव बढ़ता जाता है।
हाँ, धमकियां मिलती हैं, नफरत भरी नजरें, छोटी मोटी झड़पें होती हैं, जैसे सर्कस वाली घटना।
हाँ, उसका जिक्र था,
जहां भाइयों पर हमला होता है। यह सब दिखाता है कि खतरा टला नहीं है, बल्कि बढ़ रहा है। निजी रिश्ते समाज की नफरत से बच नहीं सकते।
और फिर वो रात आती है।
हाँ, उपन्यास का चरम बिंदु, जहाँ सारी नफरत खुलकर सामने आ जाती है।
क्या होता है?
एक हिंसक भीड़ वॉकर फार्म पर हमला कर देती है, और उस वहशीपन में लैंड्री मारा जाता है। उसकी खामोशी हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है।
ये तो दिल तोड़ने वाला है।
ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये उस उम्मीद का कत्ल है जो पनप रही थी। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत अच्छाई कितनी बेबस हो सकती है संस्थागत नफरत के सामने।
जॉर्ज ने जो अनदेखा करने की कोशिश की थी, वो क्रूर सच्चाई उसके सामने आ खड़ी होती है।
बिल्कुल, पाठक हिल जाता है इस वक्त। बदला लेने की इच्छा है।
उसका जॉर्ज पर से भरोसा उठ गया होगा।
हाँ, वो सवाल करता है, क्या जॉर्ज वाकई उन्हें बचा सकता था? क्या श्वेत व्यवस्था कभी न्याय करेगी?
और जॉर्ज,
उसे अपनी बेबसी का, अपने समाज की विभत्सता का सामना करना पड़ता है। उसे मानना पड़ता है कि वो किस जहरीले माहौल का हिस्सा है।
प्रेंटिस और उसके बीच का रिश्ता
लगभग टूट जाता है। न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आती।
और ऐसे में इजाबेल वो राज खोलती हैं।
हाँ, वो जॉर्ज को केलेब और ऑगस्ट के बारे में बताती हैं। ये उनके बीच की आखिरी दीवार गिरा देता है।
क्या इससे चीजें ठीक होती हैं?
ठीक नहीं, लेकिन शायद ज्यादा सच्ची हो जाती हैं। वो एक साझा दर्द को, एक कड़वी सच्चाई को साथ मिलकर झेलते हैं। जॉर्ज को अब क्रूरता का पूरा चेहरा दिखता है, जिसका सामना उसके अपने बेटे ने भी किया था।
उपन्यास का अंत कैसा है? क्या न्याय मिलता है?
नहीं, यही तो इसकी खासियत है। ये यथार्थवादी है, कोई फिल्मी अंत नहीं है।
लैंड्री के हत्यारों को सजा नहीं मिलती?
नहीं मिलती। ओल्ड डॉग्स वैसा ही रहता है, नफरत अपनी जगह कायम रहती है। ये पढ़ते वो थोड़ा असहज लगता है, पर शायद यही सच्चाई थी।
लेकिन प्रेंटिस का क्या होता है?
वो एक अहम फैसला लेता है। वो बदला नहीं चुनता, वो जीवन चुनता है।
वो क्या करता है?
वो अपने भाई की याद को साथ लेकर माँ को खोजने के लिए ओल्ड ऑक्स छोड़ देता है। उसकी यात्रा जारी रहती है। ये उसकी हार नहीं, उसकी हिम्मत है।
और जॉर्ज और इजाबेल?
वो बदल चुके हैं। दुनिया को अब ज्यादा कड़वी पर शायद ज्यादा साफ नजरों से देखते हैं। मूंगफली का खेत एक अधूरे सपने की तरह रह जाता है, पर वो अब साथ हैं, एक मुश्किल सच्चाई के साथ।
तो इस कहानी से बड़े सबक क्या मिलते हैं? मुख्य विषय क्या उभर कर आते हैं?
सबसे पहला तो यही कि कानूनी आजादी और असली आजादी में फर्क होता है।
हाँ, सिर्फ कानून बदलना काफी नहीं है।
बिल्कुल, जब तक समाज की सोच नहीं बदलती, व्यवस्था नहीं बदलती, सच्ची आजादी दूर रहती है।
और दुख और यादों की जटिलता।
हाँ, कैसे दुख हमें तोड़ता है पर शायद जोड़ता भी है अगर हम ईमानदार हों। और मानवीय रिश्ते कितने जरूरी पर कितने नाजुक,
खासकर ऐसे नफरत भरे माहौल में।
जी, और न्याय का सवाल, कानून बनाम न्याय, क्या कानून हमेशा न्याय करता है?
और चुप्पी का बोझ, राज कैसे रिश्तों को खोखला कर देते हैं?
और इन सबके बीच व्यक्तिगत चुनाव की ताकत।
हाँ, ये बहुत अहम है। मुश्किल हालात में भी हम चुन सकते हैं नफरत या इंसानियत।
बिल्कुल, प्रिंस का चुनाव, जॉर्ज का, इजाबेल का, ये सब इसी की याद दिलाते हैं।
और हैरिस का लिखने का तरीका, वो कैसे ये सब हम तक पहुंचाते हैं?
वो सर्वज्ञ कथावाचक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कहानी सुनाने वाला सब जानता है, किरदारों के मन की बातें भी।
इससे हम किरदारों से जुड़ पाते हैं।
हाँ, उनकी भावनाओं को महसूस कर पाते हैं, सहानुभूति होती है।
और भाषा, आपने कहा था काव्यात्मक है।
बहुत, ठहर कर महसूस करने वाली भाषा है। वो सिर्फ कहानी नहीं कहते, पूरा माहौल रच देते हैं। वो गर्मी, वो मिट्टी की गंध, वो तनाव।
उदासी तो है कहानी में।
हाँ, गंभीरता है, उदासी है, लेकिन बीच बीच में इंसानियत की, करुणा की चमक भी है।
प्रतीकों की बात करें तो मूंगफली का खेत,
वो नई शुरुआत, आर्थिक आजादी, सहयोग की उम्मीद,
और फिर उस उम्मीद के टूटने का प्रतीक।
और पानी शीर्षक में ही है, द स्वीटनेस ऑफ वाटर।
पानी जीवन है, शुद्धि है, बुनियादी जरूरत है। जब जॉर्ज शुरू में भाइयों को पानी देता है, वो एक साधारण सा इंसानियत का काम है जो नफरत से ऊपर है।
शायद यही है पानी की मिठास, वो मौलिक अच्छाई।
हाँ, जो मुश्किल वक्त में ही शायद ज्यादा महसूस होती है, जैसे आजादी की, सम्मान की मिठास भी।
और लैंड्री की खामोशी,
वो सिर्फ एक किरदार नहीं, वो प्रतीक है गुलामी के उस दर्द का जिसे कहा नहीं जा सकता, उन लाखों आवाजों का जिन्हें दबा दिया गया। उसका मौन शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है, इतिहास के घाव कितने गहरे होते हैं।
और उन्हें भरने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं, समाज को बदलना पड़ता है, व्यवस्था को बदलना पड़ता है।
एक सबक जो आज भी उतना ही जरूरी है।
बिल्कुल, और ये भी कि नफरत के अंधेरे में भी इंसानियत के छोटे छोटे काम, रिश्ते बनाना, सच बोलना, ये कितना मुश्किल पर कितना जरूरी है।
तो क्या ये उपन्यास व्यक्तिगत साहस की सीमाओं पर भी सवाल उठाता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब हो तो एक अकेला इंसान क्या कर सकता है?
हाँ, ये सवाल जरूर उठता है। और शायद ये भी याद दिलाता है कि सच्ची आजादी सिर्फ जंजीरों का टूटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ हर इंसान का सम्मान हो।
एक लड़ाई जो आज भी जारी है।
जी बिल्कुल,
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।